आधार पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम दूसरों को दोष देना बंद कर सकते हैं, हाउ टू एंड द ब्लेम गेम। तो हम सबके जीवन में समस्याएं आती है, और जब भी समस्याएं आती है तो इस समस्या का कारण क्या है ये हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, और कई बार हमको लगता है इस व्यक्ति ने ऐसे किया उसके कारण ये समस्या है और मुझे इतनी परेशानी हो गई, तो हम दूसरों को दोष देते हैं। अभी कभी कभी दूसरों का दोष हो भी सकता है, पर हम किस तरह से उसको जांच कर, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं, जिससे कि हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर रह सके और हमारे मन के संतुलन को हम ज्यादा न खोए, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यह मैं चर्चा करूंगा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 16वें 17वें और थोड़ा सा 18वें अध्याय के आधार पर। उसमें ऐसे वर्णन आता है कि 16वां अध्याय है, वो जो अध्याय उसमें हो रहा है क्या है, पहले परीक्षित महाराज ने कली को कैसे उनसे वार्तालाप किया, कैसे कली को सजा दी और कैसे उसको जगह दी, और फिर बाद में परीक्षित महाराज कैसे खुद शापित हो गए और कैसे उन्होंने फिर भागवतम का आश्रय लेने की योजना बनाई। ये आखिरी 4 अध्याय है। तो ये जो अध्याय शुरू होते हैं उसमें वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज, उनको समाचार मिलता है कि कली ने अपना प्रभाव बहुत फैला दिया है, फैलाना चालू कर दिया है। तो यह सुनते ही वह अपना धनुष्य बाण लेकर, दशास्त्र लेकर, अपने रथ पे बैठकर सारे जो राज्य है उसका भ्रमण करने लगते हैं, ढूंढने के लिए कहां और कैसे कली ने प्रभाव किया है, कैसे मैं उस प्रभाव को का प्रतिकार कर सकता हूं। इस तरह से जब वे जा रहे होते हैं तो उनको दोनों चीजें दिखती है। कुछ जगह पे उनको दिखता है कि लोग बहुत झगड़ा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और पर दूसरी जगह पे उनको दिखता है कि बहुत से लोग धर्म के अनुसार भी कार्य कर रहे हैं, और जहां पे भी जाते हैं तो वहां पे जहां पे भी अधर्मिक लोग होते हैं उनका दमन करते हैं वो, और जो धर्म की प्रस्थापना करके कली का प्रतिकार करते हैं, और जहां जहां वह अधार्मिक लोग होते हैं वो सुनते हैं कि कैसे वो परीक्षित महाराज का गुणगान कर रहे हैं, पर वो परीक्षित महाराज का गुणगान ये नहीं कर, आप कितने बड़े राजा हो, परीक्षित महाराज गुणगान कर रहे कि आप कितने महान हो कि आप उन पांडवों के पौत्र हो जिनके घर में स्वयं भगवान आए थे। साख्यम सौरधम, भगवान जो थे अलग अलग पोजिशन उनके सखा बन गए, सचिव बन गए, दूत बन गए, वो मित्र बन गए, सारथी बन गए, ऐसे भगवान के जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे अर्जुन, उनके आप पौत्र हो, आप कितने भाग्यवान हो, और हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें आप जैसा राजा है जो महान भक्त है। महत्तमे कांतिकांतम, महान लोगों में एकांत जो सर्वश्रेष्ठ है वैसे आप हैं, और हम बहुत भाग्य है। तो जब इस तरह से परीक्षित महाराज सुनते हैं तो उनको बड़ा आनंद होता है। उनको आनंद इसमें उतना नहीं होता है कि मैंने सारे दिशाओं को जीत लिया है, उनको आनंद होता है ये देखने में कि लोग कैसे भगवान के और भगवान के भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। और ऐसा जब वो कर रहे होते हैं तो तभी एकाएक वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे वो देखते हैं कि एक गाय है, एक बैल है, और वहां पे एक व्यक्ति है जिसने राजा जैसे वस्त्र पहने हुए है, पर उस वस्त्र के साथ साथ वह क्षत्रिय, क्षत्रायते इति क्षत्रिय, जो दूसरों को दर्द होता है, दूसरों को दुख होता है, उसको तारण करता है, वो क्षत्रिय है। पर ये जो व्यक्ति है वह क्षत्रिय के वेश में है, राजा के वेश में है, पर क्षत का त्रायन नहीं कर रहा है, वो क्षत का लादन कर रहा है, वो दूसरों को दर्द पहुंचा रहा है। तो वो देख के परीक्षित महाराज बड़े क्रोधित हो जाते हैं। तो जब वो इस तरह से कुछ कार्य करने वाले होते हैं तब भागवतम वर्णन करता है कि ये गाय और बैल उनमें क्या वार्तालाप चल रहा है। ये एक तरह से क्या वो प्रसंग का पार्श्वभूमि बताई जा रही है। तो अभी उनके वार्तालाप से परिचित महा समझते हैं कि जो गाय है वास्तव में वो कौन है, भूमि देवी है वो, और जो बैल है वो कौन है,
धर्म
है। तो क्या है कि जो हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो हम निसर्ग को केवल एक स्थूल चीज के रूप में देखते हैं, पृथ्वी को एक ब्रह्मांड में अनेक तारे हैं, ग्रह है, उनमें से एक चीज है, पर यह एक अधूरी दृष्टि है। इसके परे एक और दृष्टि है कि यह सब जो निसर्ग में वस्तुएं हैं उनके कोई प्रधान उनके प्रधान नेता या कोई प्रधान उसके अधिष्ठाता देव है, देवी है। अगर आप किसी बड़े ऑफिस में जाते हो या बड़े होटल में जाते हो तो कई बार वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, दरवाजे के पास हो या दरवाज़ा खुल जाता है। अगर आप अपने कार के पास जाते हो तो कार के जो भी है वो उसका गैरेज का दरवाज़ा खुल जाता है, सब कुछ कहीं ऑटोमेटेड है। उससे कोई व्यक्ति दो निष्कर्ष निकाल सकता है, एक है कि यहाँ पे कोई भी नियंत्रक नहीं है, या दूसरा कि बहुत ही प्रोफेशनल नियंत्रक है। जब सब कुछ अपने आप चल रहा है, किसी का हाथ नहीं दिख रहा है, तो एक निष्कर्ष हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं, सब अपने आप चल रहा है। पर जो मैनेजमेंट करते हैं उनको पता होता है कुछ भी अपने आप नहीं चलता है। अपने आप अगर चला जाते हैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। विज्ञान में लॉ ऑफ एंट्रोपी नाम का नियम भी है कि अगर आप निसर्ग को वैसे तरह से रख दो उसकी जो योजनाबद्धता है वो कम हो जाएगी। तो जो द एक्सलेंट मैनेजमेंट इज वेयर एवरीथिंग इज मैनेज्ड एंड नो मैनेजर इज सीन। सबसे अच्छा मैनेजमेंट क्या है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है, कोई मैनेजर दिख रहा ही नहीं है, मैनेजर को हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं। तो निसर्ग का ऐसा मैनेजमेंट होता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि ये पृथ्वी को जो भी जरूरी है, ब्रह्मांड को और इस पृथ्वी को भी जो भी जरूरी है वो हमको ऐसे लगता है कि यहीं पे पूर्ण है, भगवान पे निर्भर है, भगवान के एजेंट्स पे निर्भर है, ऐसे लगता है कि दिखता नहीं है ये। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की एक देवी है, भूमि देवी कहते हैं, और जो धर्म के भी अधिष्ठाता देव है। तो ये दोनों अभी वार्तालाप कर रहे हैं, और वो दोनों ने जो देवतागण वगैरह होते, जो हमसे दिव्य होते मानवों से, उनको रूप अलग अलग प्रकार के धारण करने की शक्ति होती है। तो उन दोनों ने ये रूप धारण किया है, अभी वो बात कर रहे हैं। तो उनमें जो वार्तालाप होता है कि वो भूमि पूछती है, धर्म को भूमि पूछते हैं, धर्म भूमि को पूछते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हो। फिर भूमि कहते हैं कि क्या मैं ही दुखी नहीं हूँ, आप भी दुखी हो। और निष्कर्ष निकलते दोनों हम दुखी है क्योंकि भगवान का से विरह हो गया हमारा, भगवान छोड़ के चले गए। और तभी वो जो कली होता है वह उन पे आक्रमण करने लगता है। तो वो जो बैल है उसके तीन पैर पहले से टूट गए हैं और चौथे पैर पे वो आक्रमण करता है, और तभी वो गाय को भी आक्रमण कर रहा है, वो बैल को अपने कुछ गदे जैसे अस्त्र से मार रहा है और गाय को अपने पैरों से मार रहा है। और यह देखकर परीक्षित महाराज बड़े क्रोधित हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं तुमने जो गुनाह किया है, क्या तुम सोचते हो कि ये सारी प्रजा अनाथ है? यहां पे जो राज्य में कृष्ण के भक्त का राज्य है, जो राज्य में जो महान कौरवेंद्र अर्जुन है, पांडव है, उनका राज्य, उनके वंश का राज्य है, वहां पे ऐसे अधर्म का कभी भी सहन नहीं किया जाएगा, और मैं तुम्हें सजा दे दूंगा, मैं तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। अभी ऐसे कहते हैं वो, पर परीक्षित महाराज भी एक धर्मनिष्ठ राजा है, इसीलिए वो कोई भी कार्य सबसे सुनने के बिना नहीं करते। कभी कभी कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं, उनको एक शिकायत मिलती है, वो एक पक्ष सुन लेते हैं और तुरंत सजा दे देते हैं, पर दूसरा पक्ष होता है उनके उनकी कहानी पूरी उल्टी उल्टी होती है। ये कई बार क्या होता है, हर एक व्यक्ति जो भी परिस्थिति हुई होती है वो परिस्थिति को कभी कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकता है। जो परिस्थिति होती है वो परिस्थिति को हम हमारे मनस्थिति के अनुसार बताते हैं। वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। जैसे चीजें हैं वैसे हम देखते नहीं हैं कभी। हम सबका अपना अपना देखने का दृष्टिकोण होता है, और हमारे दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो क्या होता है, वही चीज बिल्कुल अलग हो जाती है। दो व्यक्ति उसी चीज को बताते हैं, इस तरह से बताता है, इसको लगता है ये दूसरा ही पूरा गलत है, और दूसरे व्यक्ति से पूछता है पहला ही दूसरा पर पूरा गलत है। तो इसीलिए दो शब्द से सुनना चाहिए आपसे। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से परीक्षित महाराज ने खुद ही देखा है कि ये जो राजा के रूप में शूद्र के समान कार्य कर रहा है जो व्यक्ति, वो उसने आक्रमण किया है। तो ऐसा देखने के बावजूद वो तुरंत कार्य नहीं करते, वह गाय और बैल को पहले सांत्वना देते हैं कि तुम्हारे साथ जो अत्याचार हुआ ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वे एक सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है। तो अभी ये जो सारा सवाल जवाब का जो श्रृंखला है ये बहुत अजीब लग सकता है। अभी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है और वो घायल हो गया उस मारने के कारण, और उस व्यक्ति को पूछे अभी आपके दुख का कारण क्या है, बोले दिखता नहीं है क्या, ये मार रहा है मुझे इसलिए दुख हो, इतनी सीधी साधी बात है। तो पूछता है कि आपके दुख का कारण क्या है, तो ये सवाल बहुत ही अजीब लगेगा, एक जैसे इनसेंसिटिव लगेगा, असंवेदनशील लगेगा, क्या ऐसे सवाल पूछेगा। पर उसका जवाब जो देते हैं वो बैल देता है, वह उससे भी अजीब है। वो कहता है वास्तव में दुख का क्या कारण है ये जानना बड़ा मुश्किल है। कहते अनेक अनेक विचारवंत इसका विचार करते हैं कि ये कोई कहते हैं कि ये बहुत ही जगत ही दुखाल है, इसे दुखाते हैं। कोई लोग कहते हैं कि जब ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं, शनि आ जाता है, मंगल आ जाता है, तभी दुखाता है। कोई कहते हैं कि हमारे पूर्व कर्म है उसके कारण दुखा जाता है। कोई कहते हैं कि ये जो दुख है उसका कारण जानना नामुमकिन ही है। तो इस तरह से अलग अलग विचारवंतों ने अलग अलग विचार बताया है दुख क्यों आता है, और इसलिए उन सबके विचारों को सुन, उन सबके विचारों को देख के मैं बोल नहीं सकता कि दुख का कारण क्या है। और फिर इसके बाद परीक्षित महाराज बोलते शाबाश, कहते हैं कि तुमने जो उत्तर दिया है उससे मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत धर्म में निपुण हो, तुम धर्मनिष्ठ हो। तुम कौन हो, तुम धर्म हो स्वयं। और वो कहते हैं तुम धर्म हो इसलिए तुम जानते हो कि जो व्यक्ति गुनाह करता है उसको जो सजा मिलती है, जो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति और उंगली उठाता है उसकी भी वही गति होती है। गुनाह करने वाले और गुनहगार के और उंगली दिखाने वाले दोनों की गति एक ही होती है। ये कहां का न्याय हो गया, एक व्यक्ति ने दूसरे पर बड़ा अत्याचार किया, एक व्यक्ति दूसरे को बहुत पीटा है, दूसरे व्यक्ति बोलता है कि मैं तुमको पीटा। तो अगर हम जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बहुत पीटा है और फिर जाके पुलिस में कंप्लेन करता है और पुलिस दोनों को जेल में डाल देती है, अरे मुझे पीटा गया तो मुझे भी जेल में डाल देती है। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार कैसे न्याय है कि दोनों को वही गति मिलती है। तो वास्तव में भी हम देखते हैं ये जो है कि जो भी शास्त्र होते हैं उसके संदर्भ को देखना होता है। संदर्भ के को देख के ही हम अर्थ को समझ सकते हैं। संदर्भ को अगर नहीं देखेंगे तो फिर जो अर्थ है हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसके अगर परीक्षित महाराज यहां पे बोले जो दोष दिखाता है, जो गुने का और गुने करता है, जो गुने की और गुनेगार की और उंगली दिखाता है, तो वही गति मिलती है। तो क्या इसके बाद में परीक्षित महाराज वो बैल और कल्ली के साथ समान व्यवहार करते हैं, क्या दोनों को वही गति देते? नहीं। आप कह सकते कि धर्म ने ऐसे उंगली नहीं दिखाई थी। पर हम भागवत में देखते नहीं कभी किसी कोई शिकायत करता है कोई गुनाह कर, दोनों को एक ही गति दी जाती है। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि वास्तव में भागवतम जो चीजें जो घटनाएं घट रही है उनके अलग अलग स्तर पे कारण होते हैं। एक इमीडिएट कॉज होता है, व्हाट इज इमीडिएट, नजदीक का, पहला जो दिखने वाला जो उसका कारण होता है, उसके बाद में एक रिमोट कॉज होता है, दूर का कारण होता है, और एक अल्टीमेट कॉज होता है, एक अंतिम सबसे मूल कारण होता है। तो भागवतम जो है वो जो नजदीक जो पास का कारण है उसको देखने का भाव भागवतम में नहीं है। हम वही देखते हैं परीक्षित महाराज भी आगे जब उनको शाप हो जाता है तो वो शाप का प्रतिकार करने का प्रयास नहीं करते हैं, इसने शाप दिया उनको दोष देने का भी वो प्रयास नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं? वे कहते हैं कि ये शायद भगवान की योजना है, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। तो अभी यह भाव कब वो स्वीकार करते हैं? जब वो देखते हैं कि ये भगवान की योजना है, भगवान को उस तरह से प्रेरणा देते हैं। हर जगह पे वैसे ही भाव नहीं है। तो जब पांडवों के साथ कौरव बहुत अत्याचार करते हैं तो तभी पांडव ऐसा कार्य नहीं करते, वो सहन करते हैं एक मर्यादा तक, पर उसके बाद में प्रतिकार भी करते हैं। तो जो भी समस्या आती है हमारे जीवन में उसके अलग अलग स्तर पर कारण होते हैं। एक है उसका पास का कारण होता है, एक थोड़ा दूर का कारण होता है, एक अंतिम कारण होता है। अभी इसका मतलब क्या है कि कभी कभी हम छोटी सी गलती करते हैं और उससे बहुत समस्या हो जाती है, और कभी कभी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं और सब कुछ ही परिणाम नहीं होता है। आप कितने का ऐसा अनुभव है कि छोटी गलती का बहुत परिणाम हो गया, आपने बहुत समस्या आ गई, अनुभव है? छोटी सी गलती हो जाती है इतना सारा परिणाम हो जाता है। कभी कभी हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, ट्रेन मिस हो जाती है, और फिर सारा योजना व्यस्त हो जाता है। कभी कभी बहुत लेट हो जाते हैं, जाते हैं वहां पे ट्रेन भी लेट हो गई है, तो कुछ भी समझते नहीं आती। तो क्या होता है इस तरह से वास्तव में? अभी ऐसे क्यों होता है कि छोटी सी गलती है बड़ी गलती है ऐसा उसका फल अलग अलग मिलता है? क्या होता है कि जब हम कार्य करते हैं तो हम जो कार्यों का फल मिलता है वो किसी एक कारण से होता है, ऐसे नहीं। अभी हमने जो पास में जो गलती हुई है वह एक किस एक गलती है? अभी मान लीजिए कोई तीन व्यक्ति रास्ते पर चल रहे हैं और बारिश का मौसम है, नीचे पानी गिरने के कारण कीचड़ हो गया और जमीन फिसल गई है। अभी तीनों जगह तीनों लोग वो पानी है, उनको बात कर रहे हैं, देखा नहीं कि वो पानी है, और तीनों फिसल जाते हैं। पर एक व्यक्ति फिसल जाता है पर वो खंभे के बाजू में है तो खंभे को पकड़ लेता है, सहम जाता है। दूसरा व्यक्ति फिसलता है और पूरा पानी में गिर जाता है, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तीसरा व्यक्ति फिसलता है, गिर जाता है, और वहीं पे एक नीचे एक बड़ा टोक वाला पत्थर है, जोर से उसके सिर को लग जाता है और घायल होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है और कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है। अभी तीनों ने एक तरह से गलती की, तीनों ने देखा नहीं कि वहां पानी पड़ा हुआ है, पर तीनों के परिणाम अलग अलग हो गए। ऐसे क्यों? गलती देखेंगे तीनों की एक तरह से गलती थी, किसी ने भी पानी देखा नहीं वहां पे। तो क्या है कि जो पास का कारण होता है, द इमीडिएट कॉज इज नॉट द कंप्लीट कॉज। जो पास का कारण है वह पूर्ण कारण नहीं है। कभी एक ही परिवार में चार पांच सदस्य होते हैं और किसी एक को मलेरिया हो जाता है। अभी वो मच्छर ऐसे नहीं कि ढूंढता है कि मैं इसी एक व्यक्ति को काटने वाला हूं, शायद मच्छर ने सबको काटा पर एक व्यक्ति को मलेरिया हो गया। ऐसे कि अभी कोई बोले कितने कुछ लोग इम्यूनिटी कम होती है, उनका सेहत इतना अच्छा नहीं होता है, पर शायद सब लोग वही अन्न खा रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं, सबका सेहत उतना अच्छा हो सकता है, फिर भी एक व्यक्ति को हो जाता है मलेरिया। तो क्या होता है जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आ जाती है, कुछ विपत्ति आ जाती है, तो उसके कई स्तर पर कारण होते हैं। एक स्तर पे कारण है कि जो पास का कारण है, जैसे वो हम देखते हैं कि कोई चल रहा है फिसल जाता है, पर उससे परे एक दूर का कारण है, और जो दूर का कारण है वह है हम सबके पूर्व कर्म। तो कोई व्यक्ति का पूर्व कर्म ऐसे होगा कि उसकी सेहत अच्छी रहने वाली है तो वो फिसल जाता है पर वो किसी चीज को पकड़ लेता है, कुछ नहीं होता उसको। कोई व्यक्ति का कर्म ऐसे होता है कि वो व्यक्ति थोड़ा फिसल जाता है और बहुत चोट लग जाती है। मैं अमेरिका में था अभी, तो एक भक्त है, वो ट्रैफिक कंट्रोल में है, कॉप है वो, उसको अमेरिका में पुलिस में वो कॉप कहते हैं वहां पे। तो बता रहे थे कि कैसे एक युवक था, जैसे यहाँ भारत में क्रिकेट में लोग बहुत पागल होते हैं, वहां पे बेसबॉल के लिए बहुत पागल होते हैं, बेसबॉल है, सॉकर है, बास्केटबॉल है। तो एक युवक था, वह क्या होता है कि अभी कार जब चलाते हैं तो कार चलाते समय से नियम होता है कि आजकल मोबाइल होता है, मोबाइल में टीवी भी होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं वो कार चलाते समय टीवी देखते रहते हैं। तो अभी थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा नहीं काफी खतरनाक है। तो क्या हुआ है, तो वो एक मैच देख रहा था बेसबॉल का, और फिर वो देख रहा था और अचानक कुछ हो गया, कोई प्लेयर आउट हो गया और ऐसे देखने लग गया, और उसमें इतना चला, वो इतना अनपेक्षित था, उसमें उतना उसका चेतना उधर चली गई पर ध्यान नहीं रहा। और उसी समय पे क्या हुआ, वो स्कूल एरिया था और एक लड़का तभी अचानक दौड़ते उसने रोड क्रॉस कर लिया और वो बड़ा घायल हो गया। तो अभी तो अमेरिका में क्या है, ये ड्राइविंग के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, ड्राइविंग में अगर किसी को चोट पहुंच गई, खास करके बच्चे, छोटे बच्चों को चोट पहुंच गई, तो उसका उसको इतना फाइन हो गया उसको कि उसको अभी वो फाइन पे करने के लिए 10 साल नौकरी करने के बाद उसका फाइन पे होगा, क्योंकि वो लाइफ उसका, क्योंकि क्या हुआ, इट्स ऑलमोस्ट किसी को जीवन का खतरा हो गया उसके। तो और उनकी सिस्टम ऐसे है कि वो जो उसकी सैलरी का मेजर पोर्शन उसके अकाउंट में आएगा ही नहीं, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो उसे बच भी नहीं सकता। तो अभी एक 30 सेकंड के लिए उसका ध्यान चला गया और इतनी बड़ी समस्या आ गई। और फिर दूसरे एक भक्त बता रहे थे कि क्या अमेरिका, वो बता रहे थे कि अमेरिका और भारत में वो तुलना कर रहे थे, बोलते कि क्या होता है अमेरिका में कोई भी हॉर्न नहीं बजाता है। हॉर्न बजाना मतलब क्या है, वो एक दूसरे का अपमान करने के समान है। तुम समझते नहीं, तुम सोचते हो मुझे ड्राइविंग आता नहीं है, तुम हॉर्न कैसे बजा सकते हो, हॉर्न बजाना मतलब तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ध्यान दो। तो भारत में तो हॉर्न प्लीज, आप हॉर्न बजाओ, आप मेरे मुझे टक्कर मत करो, पहले हॉर्न बजा दो। तो क्या होता है वहां पे जो रोड्स वगैरह होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं। तो क्या होता है, एक समस्या आ जाती है उसके कारण, इतने रोड स्मूथ हो जाते कि लोग ड्राइविंग करते समय सो जाते ड्राइविंग करते करते सो जाते, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है रोड में, सीधा चलते रहो। तो वहां पे भी तो क्या है, एक भक्त बताया था मुझे कि वो मंदिर में सेवा के लिए जा रहे थे, और क्या था मंदिर में सुबह मंगल आरती के पहले उनको दर्शन खुलना था उनको, तो वो रात को कार्यक्रम था, लेट सो गए थे और अगले दिन उठे हुए और जल्दी चले गए, और चले गए और इतना थके हुए थे कि वो सो गए। और फिर वो जो सीधा रोड था, बाद में वो जगे देखे मंदिर के बाजू में आ गए पूरा 15 मिनट सो गए थे और कार चलता रहा पूरा रोड सीधा था और कोई रोड पे था नहीं। और अमेरिका में क्या होता है, सब लोग एक स्टैंडर्ड स्पीड पे चलते, तो कोई उस समय ओवरटेक भी नहीं कर रहा, सब अपने स्पीड पे जा रहे थे, तो कोई सिग्नल वगैरह नहीं था, सीधा चले गए वो। तो अभी अब कोई 10-15 सेकंड के लिए सो जाएगा तो भी समस्या आ जाती, वो 15 मिनट तक सोए कुछ नहीं हुआ। तो बोले वो, बोले भगवान की बहुत कृपा थी, मैं उनको बोला ऐसी कृपा की मांग मत करो आप। तो अभी क्या है, कभी कभी बहुत बड़ी गलती हो सकती है पर उससे कुछ समस्या नहीं आएगी, ऐसे भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी क्या है, कोई ऐसे बोलेगा क्या रे, मैं तो तभी इतना कुछ किया, कुछ फर्क परिणाम नहीं हुआ, इसीलिए मैं भविष्य में भी ऐसे करूँ, कुछ समस्या, कुछ परिणाम नहीं होगा। ऐसे नहीं है, क्या है कि हमें जो उचित कार्य है वो करना है। तो उचित कार्य जब करेंगे तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि पूर्व जन्म का कुछ कर्म होगा, इसलिए छोटी गलती के कारण बहुत समस्या आ जाएगी। पूर्व जन्म का ऐसा परिस्थिति हो सकती है कि बड़ी गलती के कारण कुछ भी समस्या, थोड़ी ज्यादा भी समस्या ना आए, और ऐसे हो सकता है। पर उसके कुछ भी परिणाम क्यों ना आ जाए, हमें महत्वपूर्ण क्या है कि हम उचित कार्य करें। तो अभी जब ये तो मैंने ऐसे ऐसे प्रसंग बताए जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा व्यक्ति कोई कार्य करें, हम ही कुछ गलती कर रहे हैं। पर अभी यही परिस्थिति में हम देखते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें बहुत परेशान करता है, हम अच्छी तरह से उनका उनसे आदान प्रदान कर रहे हैं, पर फिर भी क्या है वो व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रहे हैं और हम थोड़ी सी गलती करते हैं तो कुछ भी लोग होते हैं हम बड़ी गलती करते हैं वो भी माफ कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे तो छोटी गलती करते हैं वो हम सिर हमारे सर पे तांडव करने लगते हैं, इतना बड़ा बात बना देते हैं उसको, नहीं तो इतना क्यों कर रहे हो ऐसे, छोड़ दो इसको, पर छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। तो अभी ऐसा जब होता है तभी हमें क्या देखना है कि हर चीज का एक पास का कारण होता है और एक दूर का कारण होता है। तो पास का कारण क्या है, ये व्यक्ति ऐसे परेशान कर रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, उसका समस्या हो रही है। पर उससे भी परे एक कारण है और वह परे का कारण क्या है, वह कारण यह है कि मेरे पूर्व कर्म कुछ आ रहे हो। अभी मेरे पूर्व कर्म आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, हमें देखना है कि मैं इस परिस्थिति में आगे कैसे बढ़ सकता, मैं इस परिस्थिति में अच्छी तरह से कार्य कैसे कर सकता हूं। कभी कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, ठीक है उसको सहन कर लो और चलो आगे। कोई व्यक्ति इतना परेशान कर रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं इतना विचलित हो गया हूं, मैं इतना समस्या में हो गया कि कुछ भी कर तभी मुझे कुछ प्रतिकार करना पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ समस्या ऐसी होती है उनको सहन करना होता है, कभी कुछ समस्या ऐसी होती है उनका प्रतिकार करना होता है। तो अगर हम सिर्फ पास का ही कारण देखते हैं तो हम बोलेंगे सहन क्यों करूं मैं, और अगर हम दूर का ही कारण देखते हैं पूर्व जन्म के कारण हो गए तो अभी हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो दोनों उचित नहीं है, सिर्फ पास का कारण देखना और दूसरों पे दूसरों की घृणा करना, दूसरों का नफरत करना, ये उचित नहीं है, और सिर्फ दूर का कारण देखना और पास में कुछ भी नहीं करना ये भी उचित नहीं है। ये क्यों उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ समस्या ऐसी होती है हम व्यावहारिक स्तर पे कुछ कार्य कर लेते हैं तो फिर काफी हद तक समस्या हल हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, अभी बीमार है से उसको उनको व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है, अभी डायबिटीज हो गया है और वो फिर क्या खा रहा है उसमें ध्यान नहीं देता है, कोई कुछ मीठा खा लेता है, शक्कर की चीजें खा लेता है और फिर उसको बहुत समस्या हो जाती है। ये समस्या क्यों आई, अरे मेरे पूर्व कर्म के कारण आई, पूर्व कर्म के नहीं आ रही अभी के कर्म के कारण आई, अभी ध्यान दे दो तो क्या होगा आपको डायबिटीज की समस्या उतनी नहीं होगी। तो सब कुछ पूर्व कर्म पे छोड़ना नहीं है और सब कुछ अभी के कर्म के भी को पकड़ना नहीं है, हमें देखना है किस परिस्थिति में क्या उचित है, किस परिस्थिति में मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं, यह देखना महत्वपूर्ण है। तो मैं दोनों का जो एक्सट्रीम्स है इसके बारे में चर्चा करूंगा। एक है अगर कोई कहता है कि अभी के कर्म है उसी को उसके कारण से बोल रहे हैं, ये व्यक्ति ने ऐसा किया मेरे साथ उसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसने मुझे ऐसे बदनाम कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा ये धोखा कर दिया, ये हो गया वो, मैं क्या कर सकता। ठीक है उस व्यक्ति ने जो भी किया है वो हो गया है, अभी आगे बढ़ो। अभी जब हम उस किसी एक व्यक्ति ने क्या किया है उसी पे बहुत जोर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हम उस व्यक्ति को हम पे नियंत्रण दिला रहे हैं, हम उस व्यक्ति को हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण दिला रहे हैं। मैं से अमेरिका में मैं बता रहा था कि वो एक भक्त है, वो सुसाइड इंटरवेंशन काउंसलर है, तो वो कोई आत्महत्या कर उसके पे उनको फोन कर रहे, तो एक वो बता रहे थे कि उनको एक लड़की ने फोन किया आत्महत्या करने के बाद, मतलब भूत ने फोन नहीं किया, आत्महत्या करने के बाद मतलब क्या होता है जहर, उसने वो पिल्स ले लिए और फिर फोन किया। क्या होता है कई बार होता है वो लोग पिल देते हैं, मुझे आत्महत्या नहीं करनी है, तो तभी क्या हुआ तो एम्बुलेंस पास में ही था, वो एम्बुलेंस को बुलाया, उसको बचा लिया, पर बाद में उसको पता किया कि उसने आत्महत्या की क्यों। तो क्या हुआ था, उसका किसी लड़के से संबंध था और उसने उस लड़के को फोन किया था और वो लड़के ने उसका फोन उठाया नहीं, उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। मैं कितने बार होता है किसी का फोन उठाते नहीं है। पर क्या होता है कि व्यक्तियों के मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता है। हर एक का मैं मन के आधार पे भागवतम पे कल से चर्चा करने वाला हूँ सुबह से, तो उसमें हम आगे बताएंगे विस्तार से इसके बारे में कैसे हर एक का मन अपने अपने अलग अलग कहानी बता रहा होता है। तो अभी उसका मन क्या हुआ, वो बता रहे वो फोन नहीं उठा रहा है, मतलब वो अभी तुम्हारी परवाह नहीं करता है, शायद उसने तुमको छोड़ दिया है, शायद उसने छोड़ दिया, शायद वो किसी और के साथ है अभी, भाई मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, अभी कोई और भी आएगा वो मुझे अकेला छोड़ देगा, और मेरे सारे मित्र हो गए वो सब संबंधों में हो गए, मैं अकेला रहूंगा, सब मुझ पर दया करेंगे, ऐसे दयनीय जीवन का क्या फायदा है, जीवन का अंत करता। तो अभी हम दूर से देखते हैं तो ये पागलपन लगता है, पर जो व्यक्ति उस परिस्थिति में जा रहा है उसको पागलपन नहीं लगता है। तो क्या होता है, एक छोटी सी अभी वो लड़के को जब पता चला मैं फोन नहीं उठा उसने आत्महत्या कर दी, उसको भी बड़ा ग्लानी हो गया, कैसे तूने ऐसे क्यों किया। पर क्या है कि यहां पे वो उसने क्या किया, उस एक व्यक्ति के कार्य का इतना महत्व दे दिया कि खुद की बुद्धि खुद के कुछ अच्छी तरह से विचार करने की क्षमता पूरी छोड़ दी उसने। तो पास के कार्य को सब कुछ जोर दे देना ये गलत है। कुछ व्यक्ति ऐसे कार्य कर लेते हैं उससे हमें समस्या हो सकती है, पर किसी भी व्यक्ति को हमारे जीवन पे इतना हमें नियंत्रण नहीं देना चाहिए कि वो व्यक्ति हमें पूरा उस व्यक्ति के कार्यों से हम पूरा विचलित हो जाए। हाँ व्यक्ति हमें परेशान कर सकते हैं, पर व्यक्ति ने जो परेशान किया परेशानी ओके है, पर हम आगे बढ़ सकते हैं। वी मे हैव टू लिव विथ पेन बट वी डोंट हैव टू लिव इन पेन। हमें दुख के साथ जीना पड़ सकता है पर हमें दुख में जीना जरूरी नहीं है। फर्क क्या है इसमें, दुख के साथ जीना और दुख में जीना। ये फर्क यह है कि मान लीजिए अभी किसी को पीठ का दर्द है, तो पीठ का दर्द होता है ये ऐसा है, कई बार उसकी बीमार अच्छी से कोई दवाई नहीं होती, दवाई का जाता ही नहीं दर्द, तो वो आता है तो कुछ समय तक रहता है, सहन करना पड़ता है, ऐसे बैठो वैसे बैठो ये करो वो करो तो सहन कर ले। पर अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पीठ का दर्द हो गया, आता है कुछ समय के लिए, रहता है जाता है, पर चला भी जाता है तो अरे वापस आएगा, कब दर्द होगा मुझे, दर्द होगा तो क्या करूंगा मैं, और ऐसे दर्द क्यों हो रहा है मुझे, इतना बुरा है ये। तो दर्द होता है तो दर्द में रहते हैं, दर्द जाता है तो भी दर्द का विचार करते रहते और फिर दर्द में रहते हो। तो फिर क्या है, हमें कभी कभी दर्द के साथ रहना पड़ता है, पर दर्द में रहना जरूरी नहीं है। मतलब हमारी चेतना में वो दर्द का जो संवेदना है वो एक संवेदना है, और जो संवेदना आती है उसको क्या परेशानी होने वाली है, पर हमारी चेतना में वो दर्द ही पूरा भर जाता है, तो फिर वो बड़ी समस्या हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से क्या है कि कोई व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा कार्य कर लिया है, उसे दर्द तो होगा, वो दर्द को हम दबा नहीं सकते हैं, दर्द को भगा नहीं सकते, दर्द है, पर सिर्फ हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या होगा, उससे वो दर्द और बढ़ जाएगा और अनेक गुना वो दर्द बढ़ जाएगा। तो फिर क्या है कि वो ठीक है उसने वो कार्य कर लिया हो गया, आगे कैसे बढ़ना है हमें देखते हैं। तो अभी ये है कि कोई व्यक्ति के जो पास का कारण है उसको बहुत जोर देने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि पास के कारण को देखना ही, जो कुछ हो रहा है सब पूर्व कर्म से ही हो रहा है। भी कोई ऐसा सोचने लगता है सब कुछ पूर्व कर्म से हो रहा है तो अभी कुछ करने की जरूरत ही क्या है। अभी उसे हम बोल सकते हैं कि कोई किसी के, अगर मान लीजिए हमारे घर में कुछ चोरी हो गई, हम पुलिस में गए और पुलिस ने हमको बोला कि अरे ये आपके पूर्व कर्म के कारण अभी चोरी हो गई, अरे ये कैसा न्याय है पूर्व कर्म के कारण, पूर्व कर्म का कहां तक जाएगा। शास्त्र ऐसे बताया जाए, शास्त्र में कुछ अलग है कि जो व्यक्ति, शास्त्र में ऐसे कहीं भी वर्णन नहीं आता है कि इस जन्म में अगर कोई दुख में है उसको बोले पूर्व कर्म से हो रहा है सब कुछ। कोई ऐसे कहता नहीं है कि जब सीता का अपहरण हो जाता है तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का नहीं हो गया, कभी तो कर्म की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी क्या क्या होता है कि ऐसे शास्त्र में बताया गायों की हत्या करता है तो फिर वो व्यक्ति जो है वह गाय बनेगा और उसकी हत्या होगी, अपने निसर्ग के नियम जो है उसके काव्य ग्रंथ में देखा होगा। तो अगर इसी विचार को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अभी अभी जो अभी जो व्यक्ति अभी जो गाय है शायद वो पिछले जन्म में गाय को हत्या करने वाले थे, इसीलिए अभी वो गाय बने हैं और अभी उनकी गोहत्या हो जाएगी तो फिर क्या है वो कर्म का नियम चल रहा है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें देखना है कि जो गाय है वो शुद्ध है, इस जन्म में वो गाय ने कुछ गलती नहीं की, उनका सुरक्षा करना ये तो एक धर्म है। कोई सब कुछ पूर्व जन्म में छोड़ दिया तो फिर मान लीजिए एक छोटा बच्चा रो रहा है और माँ सोचेगी क्यों रो रहा है, पूर्व जन्म के कर्म कारण रो रहा है। नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। हमें क्या देखना है कि पूर्व जन्म का कर्म ये नहीं देखना है, हमें इस जन्म का धर्म क्या है, इस जन्म का धर्म क्या है। अभी यहां पे देखते हैं हम ये अभी अगर कोई किसी के घर में चोरी हो गई और पुलिस के पास गए हैं वो, तो पुलिस का इस जन्म का धर्म क्या है कि जो गुनाह है उसको बंद करे, गुनहगार को सजा दे। अगर हम ऐसे बोलने वाले हैं कि जो कुछ होता है पूर्व कर्म से होता है, तो फिर पुलिस वालों को बोलना चाहिए कि तुमको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म से तुम्हारी तनख्वाह भी बंद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस जन्म में भी जिम्मेदारियां होती है हमारी और इस जन्म की जिम्मेदारियां भी हमें पूरी करनी होती है। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे जो बैल है और परीक्षित महाराज है, भी बैल वो ब्राह्मण की भूमिका निभा रहे हैं और जो धर्म है वो ब्राह्मण की भूमिका निभा रहे हैं। और ब्राह्मण का भाव क्या होता है? सहनशील रहो, क्षमा करो, आप ज्यादा कुछ बात को बढ़ाओ मत, अहिंसा सत्यम क्रोधस नहीं समोदम तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। पवित्र के 18वें अध्याय के 41-22-23 उन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि अलग अलग वर्णों के का लक्षण क्या है। तो तभी बताते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं उनका लक्षण है शांति। शांति मतलब क्या? प्रभाव जाते कि विचलित नहीं होते हैं, वो माफ कर देते हैं, वो सहनशील रहते हैं, यह भाव है। पर उसके अगले श्लोक में क्षत्रियों का लक्षण बताया है, और क्षत्रियों का लक्षण बताया कि तेज शौचम बता दें, युद्धे दानम ईश्वर भावश्च, युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च, शास्त्र कर्म स्वभावजम। कहते हैं कि युद्धे चाप्य अपलायनम, युद्ध से भागते नहीं है वो। जब भी किसी का प्रतिकार करना है, किसी से संग्राम करना है, उसे भागते नहीं है। तो मतलब क्या है, अगर कोई राजा है और राजा के रूप में वो भूमिका निभा रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को जो अगर कोई गुनहगार है उसको सीधा से माफ नहीं करना है, उसको न्याय की पद्धति अनुसार जो उचित कार्य करना है। राजा को कभी कभी सजा देनी पड़ती है, तो व्यक्तिगत रूप पे माफी ये ब्राह्मण कर सकते हैं, पर एक सामूहिक स्तर पे राजा को क्या करना है, राजा को कर्तव्य करके सजा देनी है। और वही भाव हम देखते हैं कि जो बैल है वो माफ कर देते हैं, वो बोले कि क्या कारण भी पता नहीं है। पर तभी उनकी बात सुन के परीक्षित महाराज ने कहते ठीक है, क्या कारण है मुझे पता नहीं है, वो कली को छोड़ नहीं देते, ठीक कली तुम जाओ, कुछ हमको पता नहीं क्या हुआ। नहीं, वो कली को डांटते और कली को सजा देते हैं। तो तत्वज्ञान होता है, तत्वज्ञान को हमारे जीवन में कैसे अमल करना है यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो महत्वपूर्ण भाव क्या है यहाँ पे, हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म में के अनुसार हमें क्या कार्य करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सबके संबंधों में कोई व्यक्ति हमें परेशान कर देता है, तो अभी वो व्यक्ति बाकी सब पद्धति से अच्छा है पर एक परिस्थिति में वो बहुत परेशान कर देते हैं हमको, तो तभी हमें देखना है कि ठीक है इस एक चीज़ को बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, ये सहन कर सकता हूँ मैं, बाकी सब चीज़ों में तो अच्छा है व्यक्ति है। पर अगर व्यक्ति हर चीज़ से हमें परेशान कर रहे हैं और फिर हम उसमें सहन करते हो, तो पर हम सहन तो करते रहते हैं पर अंदर से इतनी घृणा होती है, इतनी नफरत होती है, इतना क्रोध होता है कि हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाते, तो फिर तभी हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमें क्या देखना है, मेरा धर्म क्या है। तो गाय का वो बैल का धर्म अलग था और जो परीक्षित महाराज का धर्म था वो अलग था। तो हमारा धर्म, हमारे धर्म को समझकर फिर हमें कार्य करना है। तो इसका और वर्णन, इसका और विस्तार, हमारे धर्म को हम कैसे समझे और किस किस परिस्थिति में कैसे हम कार्य करें, इसकी हर चर्चा हम कल करेंगे। तो अभी किसी को कोई सवाल है, सारांश में क्या हुआ बोलते हैं, फिर हम कुछ सवाल देखते हैं। व्हाट टाइम विद क्वेश्चन आंसर्स? अच्छा, किस सवाल कितने हैं उसके अनुसार मैं, किसी कोई सवाल है? 1, 2, 3, 4, ठीक है, आ जाएगा सवाल। ओके, तो ये जो हम सहन करते हैं उसके बारे में मैं एक उदाहरण देके फिर इसका इसका मैं विस्तार कल करूंगा। कल पहुंच सकते हैं कि हमें कितना सहन करना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप बॉम्बे के लोकल में कहीं जा रहे हैं, तो जब लोकल में जा रहे होते हैं तो कोई बहुत भी वो 50 लोगों का एक बोगी है पर उसमें 250 लोग हैं, तो सब लोग एक दूसरे से करीब आए, तो हम खड़े हैं और कोई व्यक्ति हमारे बाजू खड़ा है और हमको ढकेलने लगता है, वो हमको ढकेलने लगता है। तो अभी हम उसको ढकेलते, तुम खुद को इतने ताकतवर समझते हो, मैं दिखाता हूँ मेरी ताकत, हम उसको ढकेलते हैं, वो हमको ढकेलता है, हम उसको ढकेलते हैं, और उसको ढकेलने में इतना हम लग जाते हैं कि हमारा स्टेशन आके चला जाता है, हम ढकेलते रहते हैं। अभी क्या फायदा है उसका? ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी दादागिरी करना चाहता है, दिखा जाता है, ठीक है तुम आज मैं बाजू को खड़ा हो जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की बात है, उसको ढकेलने दो। तो वो जो ढकेल रहा है उसे परेशानी हो रही है, पर छोटी सी परेशानी है, तो छोटी सी परेशानी है तो उसको सहन कर लो। पर कोई व्यक्ति हमको ढकेलते ढकेलते ट्रेन से ही बाहर ढकेल लेगा, तो फिर हम उसको सहन नहीं कर सकते। क्या ट्रेन से ढकेलना ये बहुत बड़ी चीज है, तो फिर हमें प्रतिकार करना पड़ेगा उसका। तो क्या है, जो छोटी चीजें हैं उनको हम सहन कर सकते हैं, बड़ी चीजें हैं उसका प्रतिकार करना जरूरी है। तो बुद्धि का मतलब यह है कि समझना क्या चीज छोटी है और क्या चीज बड़ी है। तो ये हम कैसे समझे और किस चीज का सहन करें, किस चीज का प्रतिकार करें, इसका वर्णन हम कल के प्रवचन में आगे करूंगा। तो आज सारांश में चर्चा की कि किस तरह से हमें दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति से आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे परीक्षित महाराज कली के आने के समाचार को सुनते ही कली का प्रतिकार करने के लिए अपने राज्य निकल पड़े, और फिर जब उन्होंने देखा कि कली एक राजा के रूप में वो गाय और बैल को हिंसा कर रहा था, तो उसको परेशान, उसको सजा देने के तैयार हो गए। पर उसके पहले जब उन्होंने वो बैल को पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो बैल ने जवाब दिया कि मुझे पता नहीं है। परिजमा ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत ज्ञानवान हो। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्यों उसका सवाल पूछा नहीं, उन्होंने क्यों जवाब दिया नहीं, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो दुख होते हैं उसके अलग अलग स्तर पर कारण होते हैं। जो एक पास का कारण होता है, एक दूर का कारण होता है, एक अंतर्गत कारण होता है। तो जो वो भागवतम का भाव क्या है कि पास का कारण मत देखो, दूर का कारण देखो और उसका निवारण करो। परीक्षित महाराज श्रृंगी को कुछ दोष नहीं देते हैं, ठीक है, जिस कारण से दे दिया शाप, ठीक है, हो गया, पर अभी मैं भगवान का आश्रय ग्रहण करूँगा, उसका मैं और वर्णन करूँगा। पर तो जो बताया गया है कि गुनाह करने वाला और गुनाह के और गुनहगार की उंगली दिखाने वाला, दोनों को वही गति मिलेगी, मतलब क्या, दोनों उसी अज्ञान में रहेंगे, दोनों क्या कर रहे हैं, पास के ही कारण को देख रहे, दूर के कारण के अंतिम कारण को देख ही नहीं रहे, दोनों भौतिक चेतना में, इसलिए दोनों भौतिक जगत में रहेंगे, अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको गति मिलेगी, पर दोनों भौतिक जगत के अज्ञान में रहेगा, इसलिए दोनों को वही गति मिलेगी। तो इसलिए हमें क्या देखना है कि जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है उसका कोई एक कारण नहीं होता है, एक पास का कारण होता है, दूर का कारण होता है और एक अंतिम कारण होता है। तो तीन व्यक्ति फिसलते हैं पर तीनों को अलग अलग प्रकार की घाव होती है, दो व्यक्ति गाड़ी चलाते हमें ध्यान नहीं देते हैं पर एक को बहुत समस्या आ जाती है, दूसरे को कुछ समस्या नहीं आती है। हम किसी से कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, थोड़े से कुछ गलती हो जाती है हमसे, एक व्यक्ति सहन कर लेता है, दूसरा एक व्यक्ति माफ कर देता है, दूसरा व्यक्ति एक तांडव कर देता है। तो ये क्या है, उसका पास का कारण ही पूर्ण कारण नहीं है। तो हमें देखना है कि कभी कुछ परिस्थिति पास के कारण आ रही है, कभी कुछ परिस्थिति पास के कारण, वो तो एक निमित्त है, पूर्व कारण के पूर्व कर्म के कारण ही कारण आ रही है, पूर्व कर्म के कारण आ रही है। तो फिर हमें देखना, कभी सिर्फ पास के कर्म का, पास के ही कार्य को हम देखते हैं तो हम छोटी चीज को बहुत बड़ा देने के, एक व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया तो व्यक्ति, कोई व्यक्ति आत्महत्या करने आ जाएगा, सिर्फ पास की, पास का कारण कोई व्यक्ति परेशान कर भी रहा है तो ठीक है वो परेशान कर रहा है, उसको मैं सहन कर सकता हूँ, दर्द के साथ मुझे जीना पड़ सकता है, पर दर्द में जीना जरूरी नहीं है। वही चीज़ के बारे में बार बार विचार करता हूँ, दर्द में जीना पड़ेगा मुझे, तो कभी कभी पास की चीज़ें जो है उसको एक थोड़ा दुख है पर वो सहन कर लूंगा मैं, पर सिर्फ दूर की चीज़ को देखते हैं, पास को देखते ही नहीं है, तो फिर पास की चीज़ को थोड़ा बदल के, थोड़ा कुछ अच्छी तरह से कार्य करके मैं उसका हल भी कर सकता हूँ, कुछ कम भी कभी कर सकता हूँ। अगर मुझे पूर्व कर्म से भी डायबिटीज़ क्यों नहीं है, पर अगर मैं अभी मेरे अन्न पे नियंत्रण रखता हूँ समस्या कम आएगी मुझे। तो सब कुछ पूर्व कर्म पे अगर हम डाल देते हैं तो फिर हम इस जन्म के धर्म को भूल जाते हैं और वह उचित नहीं है। तो हमें जब हमारे यहाँ समस्या आ रही है तो हमें देखना क्या है, पास का कारण या दूर का कारण यह देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इतना महत्वपूर्ण क्या है कि मेरा धर्म क्या है, मेरे लिए उचित कार्य क्या है, और वो उचित कार्य करने के लिए अगर थोड़ी समस्या है मैं सहन कर लूंगा, ऐसे मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, धकेल रहा है मुझे, बाजू खड़ा हो जाऊंगा, पर अगर कोई मुझे गाड़ी से बाहर ही ढकेलता है तो मैं सहने का प्रतिकार करना पड़ेगा। अगर कोई मुझे ऐसी समस्या में डाल रहा है कि मैं मेरा धर्म ही नहीं कर पा रहा हूं, मतलब गाड़ी से मुझे बाहर फेंक रहा है, तो फिर मुझे तभी मुझे प्रतिकार करना चाहिए। तो हम जो दोष देखने की प्रवृत्ति के परे जाने के लिए क्या है, देखना है कि पास का ही कारण नहीं है, उसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, और उसके अनुसार हमें उचित, हमारे धर्म के अनुसार क्या कार्य है वो कार्य करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? यस, यहाँ पर माइक कहाँ है? आप बोल सकते हैं, मैं दोहरा दूंगा। अभी हमारी, हम भक्ति कर रहे हैं, शायद हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, पर हमें क्षत्रिय वैश्य शूद्र की प्रवृत्ति हो सकती है, उसके अनुसार हमारे कार्य होते हैं। तो जब हमारी समस्या, हमारी जो भी समस्या आती है, जैसे बताया कि ब्राह्मण सहन कर लेते हैं पर क्षत्रिय जो न्याय देखते हैं, प्रतिकार भी करते हैं, तो हमें कैसे कार्य करना चाहिए? कैसे है कि हमें परिस्थिति में देखना है कि इस परिस्थिति में मेरी भूमिका क्या है। कि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वी वॉन्ट ब्राह्मणस विद क्षत्रिय स्पिरिट, मैं ब्राह्मण चाहिए पर क्षत्रिय के भाव के साथ। जो ब्राह्मण हो गए सिर्फ पूर्ण शुद्ध केवल ब्राह्मण ही हो गए, वो क्या बोलेंगे? ओके, मैं तो ज्ञान दूंगा, अगर जिसको सुनना है ज्ञान सुनने के लिए आ जाएगा, नहीं आएगा तो वो उनका ही कर्म है। तो क्षत्रिय ऑर्गेनाइज करेगा, अरे हम ये कथा करेंगे, तुम यहाँ पे पब्लिसिटी करो, तुम यहाँ पे प्रचार करो, ये प्रचार करो, तुम ये करो, जानकारी दो, प्रमोट करो, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करो, ये करो, वो करो, ताकि ब्राह्मण अगर कथा करेगा तो कुछ प्रसाद का योजना भी नहीं करेगा, कोई हो गया नहीं हो गया छोड़ दो, नहीं क्षत्रिय पूरा योजना करेगा ताकि कंप्लीट एक्सपीरियंस मिले लोगों को, एक पूर्ण तरह से अनुभव मिले। तो हमें, हम अगर प्रभुपाद जी केवल एक ब्राह्मण के रूप में ही रहते तो वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का संस्थापन कर ही नहीं पाते, कई बार उनको क्षत्रिय के रूप में भूमिका करनी पड़ी। जब मुंबई में, जब जुहू में जो हमारी जमीन थी, वो एक व्यक्ति मिस्टर एन जो थे, वो पैसे लिए थे और जमीन भी देने को तैयार नहीं था, दोनों लेने का प्रयास कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी तभी क्षत्रिय के समान युद्ध करने लग गए थे, ना शस्त्र नहीं उठाए पर कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, अपने भक्तों को किस तरह से अलग अलग महत्वपूर्ण लोगों से मिलने के लिए बताया, पूरा एक सेनापति होता है जो अपनी सेना को मार्गदर्शन करता है, वैसे करने को लगाया उन्होंने। तभी प्रभुपाद जी ने बताया कि क्या, कि मेरे मृत शरीर के ऊपर भी इस व्यक्ति को, मिस्टर एन को, भगवान कृष्ण के मंदिर की जगह नहीं मिलेगी, प्रभुपाद जी बहुत दृढ़ संकल्प में लगे। तो प्रभुपाद जी ने युद्ध भी किया है कृष्ण के लिए। तो हमें देखना क्या है हमारी परिस्थिति में कि हमें हम सेवा किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारी हमारे सेवा के लिए हमारे सेवा के लिए जो भी अनुकूल है, जो भी जरूरी है वो हमें करना है। तो कभी तो परिस्थिति अलग अलग पद्धति से हो सकती है। तो मान लीजिए मैं मंदिर में एक सदस्य हूं, मैं केवल एक मंदिर में आने वाला एक भक्त हूं, और दूसरा व्यक्ति कुछ उचित कार्य नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार का कार्य, तो शायद मैं देखता हूं उस मन में चित हो जाएगा मेरा, पर मुझे न तो उसमें पोजीशन है या पावर है कुछ करने की, तो शायद मैं थोड़ा रिपोर्ट कर दूंगा किसी को और वो हो गए, और किसी बार कुछ उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे देखना है कि इस परिस्थिति में मैं करने की क्या क्षमता है मेरी। तो हमारा धर्म है हमारी क्षमता के अनुसार भी निर्धारित होता है। तो अगर मेरी क्षमता कुछ उसको ठीक करने की नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक उसके बारे में बार बार विचार करके जब मंदिर में आता हूँ तो भगवान के स्मरण के जगह उसके स्मरण होता है, तो ऐसे छोड़ दो। मैंने मेरा कार्य कर दिया, अगर जो कुछ गलत हो रहा है अगर सही करना है, जो मैंने बता दिया जो अथॉरिटी है वो करने वाले कर देंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पे भगवान की मेरी सेवा चालू रखूंगा। पर अगर कोई तो वो उस समय जिस चीजों पे हमारा नियंत्रण नहीं है और जिस चीजों में हम खुद को डालना इतना नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, हम उसमें ब्राह्मण के रूप में क्या कर सकते हैं, बता देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, छोड़ दो उसके बाद। पर अगर हम टेंपल के मैनेजमेंट में हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अबे अगर इफ वी आर टेकिंग अ पोजिशन ऑफ मटीरियल पावर, देन वी आर बाउंड टू एग्जीक्यूट मटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। अगर हम जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर तभी हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा। अभी किसी को कोई गलत कर रहा है, शायद उनको एक चेतावनी देके छोड़ देते हैं, या फिर वो माफ मांग लेते, माफ कर देते हैं, या फिर कुछ कार्य करना पड़ता है। तो हमें देखना है कि अगर व्यक्तिगत रूप पे मुझे मेरी सेवा आगे बढ़ानी है, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है उसमें मेरा मन विचलित हो रहा है, तो फिर मैं उस व्यक्ति से दूर रह के मेरी सेवा करूंगा। पर अगर मैं कम्युनिटी के लीडर्स में हूं तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि ये समाज में एक अच्छा वातावरण रहे, अच्छे उदाहरण रहे, और उसके लिए फिर मेरी जिम्मेदारी क्या, अगर मैंने कम्युनिटी के समाज के एक लीडर की जिम्मेदारी अगर ली है तो फिर उसके अनुसार मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो इसका कोई ऐसे फिक्स जवाब नहीं है। आपको हमें क्या कर रहा है कि हमारे खुद की आध्यात्मिक प्रगति तो आगे चालू रखनी हमें, तो उसके लिए कैसे रखनी है, कुछ परिस्थिति को हम अगर हमारी क्षमता नहीं है तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, कुछ परिस्थिति को रिपोर्ट कर सकते हैं, कुछ परिस्थिति पे हमें खुद कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम इसमें बहुत घुस जाएंगे, ये क्षत्रिय का भाव क्या है, ब्राह्मण का भाव क्या है, वैश्य का भाव है, तो उसमें हम बहुत फंस सकते हैं मन में। हमें देखना क्या है, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय का उदाहरण इसलिए दिया कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हो सकती है, उसके लिए उदाहरण दिया था मैंने। हमें देखना है कि मेरे सेवा के लिए क्या अनुकूल है। अभी वही प्रभुपाद जी जब झांसी में थे, झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था, तो तभी वहां पे भी वो एक मंदिर बनाने की योजना बनाई थी उन्होंने, पूरा इनॉग्रेशन भी हो गया था लीग ऑफ डिवोटीज का, पर तभी उनके खिलाफ एक षड्यंत्र चालू हो गया और वो जगह उनसे छीनी गई, और प्रभुपाद जी तभी कोर्ट में जाके लड़ सकते थे, पर उन्होंने बोला इट्स नॉट वर्थ इट, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्यों, और झांसी में जो लोग आ रहे थे वो इतने भक्ति में गंभीर नहीं थे, झांसी एक छोटा सा शहर था, भक्त श्याम सिंह की इच्छा थी कि हमें मंदिर बनाने हैं तो बड़े शहरों में बनाने चाहिए, बहुत लोग आएंगे। अलग अलग कारणों के कारण ने फैसला किया कि ये लड़ना कुछ मतलब नहीं है इसमें, और तभी उन्होंने चले निकल गए वहां से। तो क्या है कि हमें देखना है मेरी सेवा क्या है, मेरी सेवा के लिए ये परिस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, ये परिस्थिति के बदलने की मेरी कितनी क्षमता है, वह सब देख कर फिर हमें कार्य करना है। Does that answer your question?
Thank you.
आपका सवाल था कुछ?
Person who shows claims gets the same reaction. It's like the law of karma. Actually,
अच्छा मैं हाँ, जो अगर कोई व्यक्ति उंगली दिखाता है कि उसको भी वही प्रतिक्रिया मिलती है, उसका क्या मतलब है? मैं बता कि उसका भी मतलब नहीं कि कर्म के स्तर पे उसको उसी प्रकार की प्रतिक्रिया मिलेगी, पर जो व्यक्ति दूसरे को पे गुनाह कर रहा है, जो व्यक्ति गुनहगार की उंगली दिखा रहा है, वो दोनों भौतिक चेतना में, दोनों क्या है, सिर्फ पास के कारण को देख रहे हैं, दूर के कारण कोई देख नहीं रहे, इसीलिए दोनों भौतिक चेतना में रहेंगे। ये भौतिक चेतना में कहाँ रहेंगे, किस प्रकार की प्रतिक्रिया किसको मिलेगी, वो अपने अपने कर्म के अनुसार है, पर दोनों आध्यात्मिक अंधकार में ही रहेंगे, दोनों आध्यात्मिक तत्वज्ञान के दूसरे कोई देख नहीं रहे। से भाग शिशु परिषद में आता है वर्णन, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यौ विद्यायां रतः। से बताया गया है अंधम तमः प्रविशन्ति, कि जो अज्ञान में रहते हैं वो अंधकार में जाएंगे, पर जो तथाकथित ज्ञान में होते हैं वो उससे भी बड़े अंधकार में जाएंगे। ये क्या मतलब है इसमें, दोनों अंधकार मतलब दोनों आध्यात्मिक तत्व के आध्यात्मिक ज्ञान से वांछित रहेंगे और आध्यात्मिक से दोनों अंधकार में रहेंगे। अच्छा ओके ओके, तो जो बैल के तीन पैर टूट गए थे या काटे गए थे, तो क्या वो वास्तव में काटे गए थे या वो अलंकार के रूप में है? तो ऐसे ही बताया गया है कि जब परीक्षित महाराज ने कली को सजा दे दी, उसके बाद में उन्होंने उसके तीन पैर ठीक भी कर दिए, तो अभी क्या है कि यह धर्म बैल के रूप में आए हैं, तो अभी वो एक तरह से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड सिंबॉलिक, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं वो प्रत्यक्ष है और कुछ प्रतीकात्मक है। तो उसके तीन पैर कट गए हैं, मैं अभी धर्म जो है, धर्म जो राजा है, कुछ लोग कहते हैं यमराज जो है उनके समान ही धर्म एक धर्म है। तो अभी धर्म अपने जहां पर भी वो है, वो अपने सिंहासन पर बैठे, उनके कुछ अवयव कटे हुए ऐसे नहीं, वो देवता है, वो शक्तिशाली है। तो ये प्रतीकात्मक रूप में है कि मतलब धर्म के चार पैर जो है उनसे तीन पैर कट गए, मतलब धर्म की बहुत ग्लानी हो गई है। और जब परीक्षित महाराज धर्म के तीनों पैर अब उन तीनों पैरों को वापस ठीक कर देते हैं, उसका मतलब है कि उन्होंने उस व्यक्ति को उन्होंने धर्म की प्रस्थापना, उन तीन चीजों की भी प्रस्थापना कम से उनके राज्य जब तक था पुनः उसकी कर दी थी उन्होंने। अच्छा उस समय जब परीक्षित महाराज देखा तो उस लीला में उसके पैर अभी ऐसे बटा गया था, टूट गए थे, तो एक पैर पे खड़ा था, अभी टूट गए थे, कटे हुए थे। क्या है कि पूर्व समय में अलग अलग प्रकार की शक्तियां थी लोगों के पास, तो ऐसे बताया गया है कि महाभारत रामायण में खास करके कि अगर कोई वानर उनके हाथ पैर भी कट गए होंगे, वो बेहोश हो गए होंगे, तो अभी संजीवनी के कारण वो पुनः जीवित हो गए। तो क्या है कि अगर कुछ अवयव कट भी गए हैं तो भी उनको कुछ ऐसे दिव्य शक्ति होती है उसे जोड़ भी सकते हैं। तो वहां पे वैसे बताया गया कि वो अभी कट गए हैं या निकल गए हैं या कमजोर हो गए या हड्डियां टूट गई है, वो एक पैर पे खड़े थे, मतलब बाकी जो तीन पैर थे वो किसी काम के नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, और परीक्षित महाराज ने तीनों ठीक कर दिए। ओके
परिवार में कुछ भी समस्या है तो बोलते हैं कि पूर्व कर्म के वजह से जैसा आएगा वो सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके वजह से आए, और हेल्थ की भी बोलते हैं कि नहीं पूर्व कर्म में जैसा आए हैं वैसा ही हेल्थ रहेगा, हम ज्यादा कोशिश करें ना करें तो वैसा ही रहेगा, तो ऐसा हमारा
है। तो इसके हाँ, तो अगर परिवार में समस्याएं आती है तो हम कहते हैं शायद पूर्व कर्म क्या आई है, आएगी चली जाएगी, या हम ध्यान हमारा सेहत भी होता है उसको भी पूर्व कर्म के अनुसार बोलते हैं आएगी जाएगी। तो वास्तव में क्या है कि हमें किसी भी तरह से एक्सट्रीम की ओर नहीं जाना है। अगर हम सब कुछ पूर्व कर्म के ऊपर ही छोड़ देंगे तो फिर क्या है कि इस जन्म में जो कर्म है उसकी भी जिम्मेदारी है हमें। जो शास्त्र में बताते हैं कि पूर्व कर्म के कारण हमें दुख मिलते हैं, वही शास्त्रों में एक एक ज्ञान का विभाग है आयुर्वेद। आयुर्वेद में अलग अलग बीमारियों के अलग अलग हल बताए। अगर सब बीमारियां पूर्व कर्म के कारण ही आ रही है तो फिर आयुर्वेद की जरूरत ही क्या है, है ना? जरूरत क्या है आयुर्वेद की? जो भी बीमारी आ रही है वो पूर्व कर्म क्या है? अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर कोई दवाई दे रहा है तो वो आपके पूर्व कर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसे नहीं है। वास्तव में क्या है, हमको जब शरीर मिलता है, हमको जब हम किसी परिवार में होते हैं, किसी समाज में होते हैं, तो हमारी उसके साथ भी जिम्मेदारियां होती है। अगर इस जन्म में इस शरीर के साथ अनुरूप या इस परिवार के अनुसार, इस राष्ट्र के अनुसार जो जिम्मेदारियां है अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो फिर उसकी प्रतिक्रियाएं होती है। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वास्थ्य अच्छे से देखभाल नहीं करता है, ये मैं अमेरिका में था अभी, तो वहाँ पे एक जगह अलाचुआ नाम की जगह है फ्लोरिडा में, तो जो वो वहाँ पे क्या है, फ्लोरिडा में टैक्सेस वगैरह बहुत कम होते हैं, तो वो रिटायरमेंट स्टेट कहते हैं वहाँ पे, जो लोग रिटायर वहाँ पे जाकर रहते हैं। तो प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य वहाँ पे रहते हैं और वो वहाँ पे उनका अमेरिका में प्रभुपाद जी शिष्यों का सबसे बड़ा कम्युनिटी वहीं पर है। तो वहाँ पे एक भक्त है सेकेंड जनरेशन के, हमारी जनरेशन के, वो डॉक्टर है। तो वो बता रहे थे कि कई ऐसे प्रभुपाद जी शिष्य थे वो बहुत कम सोया करते थे, 3-4-5 घंटा सोया करते थे, और फिर उनको बहुत से हेल्थ की समस्या आ गई थी, सेहत की बहुत समस्या आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आपको और सोना जरूरी है। नहीं 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 प्रभुपाद जी, कम से कम सोना चाहिए। ठीक है, आप कम सो रहे हो पर फिर वो समय आप मेडिकल ट्रीटमेंट में गवा रहे हो। आप न केवल मेडिकल ट्रीटमेंट समय गवा रहे हो, अरे आप उसका पैसा कितना खर्च होता है। अमेरिका में अगर आप बीमार हो जाते हो तो इतना उसको हेल्थ केयर को वो हेल्थ स्केयर कहते हैं, हेल्थ स्केयर। मैं एक जगह अमेरिका में था, मैं एक एयरपोर्ट पे प्रसाद ले रहा था, एक जगह से दूसरी जगह आना था मुझे, तो जो प्रसाद में था उसमें डेट होते ना, डेट का खजूर, तो खजूर का एक दाना रह गया था, उसमें खजूर का बीज रह गया था, तो मुझे पता नहीं था, बाकी सब जो मुलायम था वो मैं चबा दिया, और जैसे ही चबा दिया वो क्या, उससे मेरा एक दांत निकल के बाहर आ गया और खून आने लग गया, दांत दांत पूरा बाहर आ गया था, पूरा ही टूट गया था, काफी हद तक टूट गया था। तो तभी तो तभी तो थोड़ा ज्यादा तो दर्द हुआ था, पर बाद में कम हो गया वो दर्द। तभी मैं एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर बोले कि अगर आपको ये दांत को फिल भी करना है तो उसके लिए बोले कि आपको $2,000 देना पड़ेगा। $2,000 मतलब 1,00,000 रुपए दांत फिल करने के लिए, और अगर दांत रिप्लेस कर रहा है तो बोले $10,000 लगेगा। तो फिर मैं भक्त थे बंदे भारत में, मैंने उनको वो फोटो निकाल के बताया, बोले कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो आप सहन कर लो, हम यहाँ पे आके फिक्स कर देंगे। तो क्या है, मैं ये बता रहा था कि वो भक्तों को बहुत समस्या हो रही थी और बहुत खर्चा भी हो रहा था, तो कुछ भक्त है फिर उन्होंने स्वीकार किया और वो पर्याप्त मात्रा में सोना चालू कर दिया। और बोले कि बताए थे, वो भक्त बताए थे कि उन भक्त से भी मिला है, बोले वो पिछले 6 महीनों में मैं है $1,000 मेडिकल एक्सपेंस में सेव हो गए। तो इसका मतलब नहीं कि ज़्यादा सोना चाहिए, इसका मतलब यही कि हमें जितना ज़रूरी है उतना सोना चाहिए। क्या है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, कि अगर हम हमारे शरीर के प्रति जो कर्तव्य है वो नहीं करते, शरीर मान लीजिए सत्य है कि हम शरीर नहीं है, पर शरीर हमारे लिए एक ज़रूरी यंत्र है। अगर हमारे पास कोई कार है और कार का अच्छा देखभाल नहीं करते हैं हम, तो फिर कार से जो हमें काम करना है वो नहीं कर पाएंगे, और कार का देखभाल नहीं करेंगे तो बाद में कार में बहुत समस्या आ गई, फिर उसमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो शरीर के लिए ज़रूरी है, उचित अन्न, उचित रेस्ट लेना, जो भी ज़रूरी है वो करना ज़रूरी है हमें, और वह हमें देखना है कि वह मुझे इस जन्म में जो मेरे जो मिला है उसके प्रति जिम्मेदारी है। तो परिवार में भी ऐसे होता है, कभी समस्याएं होती है, कुछ कुछ समस्याएं होती है, उनके बातचीत करने से थोड़ी समझ और समझा एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे समझते हैं और फिर हल हो जाता है। उससे हल भी नहीं हुआ तो कम से कम जो टेंशन है वो तो कम हो जाता है थोड़ा। पर अगर हम बातचीत नहीं करते, क्या बोले, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा है, हम बोलते हैं तुम जब करो हम जब करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जब कर रहे हैं तुम जब कर रहे हैं, भले दोनों जब भी कर रहे हैं, पर जब में हरे कृष्ण को याद नहीं कर रहे हो, उसने ऐसे कैसे किया, पूरी घृणा से चल रहा है। तो वो बाहर से हरे कृष्ण चल रहे हैं, अंदर से ये व्यक्ति इतना बुरा है, वो वैसे चल रहा है, कुछ मन लग ही नहीं रहा है जब में उसमें। तो ऐसे क्या है कि हमें देखना है कि परिस्थिति का निवारण करने के लिए क्या उचित है। तो कभी कभी ऐसे होता है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि उसका कुछ हल होता ही नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमें चल हमें कम कुछ कर ही नहीं कर सकते, पर कुछ पर वो कुछ किए बिना ही सोचना कि कुछ कर नहीं सकते, ये उचित नहीं है। कभी कभी हमारा पूरा प्रयास करने के बाद भी कोई समस्या का हल नहीं होता है। कभी कभी हमें कोई बीमारी होती है, हम दवाई लेते हैं, हम उसका परहेज का पालन करते हैं, फिर भी बीमारी आती नहीं है, तब हम सोच सकते हैं कि पूर्व कर्म है। तो सब जो जो भी जरूरी है वो करने के बाद भी हल नहीं हुआ तो फिर पूर्व कर्म के मान से सहन कर सकते। पर पहले से अगर ऐसे सोच लेंगे तो वो पूर्व कर्म नहीं है, वो वर्तमान का कर्म का फल हो सकता है। ओके, थैंक यू। यस, तो अभी कैसे कर्मकांड से कहते हैं कि जो दुख आने वाला है वह तो आके नहीं, प्रारब्ध कर्मकांड से हम उसको निवारण कर सकते हैं। पर ऐसे कहते हैं कि प्रहलाद महाराज की जो दुख आने वाला है वो तो आने ही वाला है, उसको आप टाल नहीं सकते। ठीक है, अभी दोनों सत्य हो सकते हैं। क्या है कि सबसे पहली चीज है गहना कर्मणोगति। गहना कर्मणोगति मतलब कर्म कैसे चलता है हमें पता नहीं है, इसीलिए ये चीज क्यों हो रही है उसके जांच में हम जाएंगे तो समस्या बहुत बढ़ जाएगी। मुझे इसका प्रतिकार कैसे करना है, मुझे इस परिस्थिति में आगे कैसे बढ़ना है, मैं मेरा धर्म मेरी सेवा आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये देखना है मुझे। अभी भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है तो क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ मैं। तो अभी मान ली ऐसे होता है कि क्रिकेट में भी जो अंपायर होते हैं कई बार गलत निर्णय देते हैं। कोई बल्लेबाज आउट होता है उसको नॉट आउट बोल देते हैं, कोई बल्लेबाज नॉट आउट होता है उसको आउट बोल देते हैं। अभी ये क्रिकेट में भी प्लेयर जानते हैं कि कभी कभी से बैड लक हो जाता है कि आप आउट हो फिर भी नॉट आउट बोल देते, आप नॉट आउट हो फिर भी आउट हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल 15 साल खेलता है तो कितने बार उसके साथ वो गलत निर्णय आ गया वो समान हो जाता है, नॉट आउट होते कभी आउट हो जाता है, कभी आउट होते नॉट आउट हो जाता है, तो वो पूरा समान हो जाएगा। पर क्रिकेट में किस समय पे सही वो डिसीजन गलत आया सही आया वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब समझ रहे, अगर मैच का आखिरी ओवर है और उस समय गलत डिसीजन आ गया तो वो पूरा मैच हार जाएगा। अगर मैच के पहले ओवर में या बीच में कहीं आगे गलत आ गया तो ठीक है वो आउट हो गया, दूसरा व्यक्ति आगे कुछ कर सकता है। सो अगर वो क्रिकेट प्लेयर ऐसे मैच में है कि अभी उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो फिक्स नहीं है, अगर अच्छा खेलेगा तो उसको निकाल देगा टीम से, और उस समय उसको गलत डिसीजन मिल गया उसका करियर उससे खत्म हो जाएगा। अगर उसको अच्छे तरह से टीम में उसका पोजीशन है फिक्स्ड और एक गलत डिसीजन मिल गया, ठीक है उसे उतना परिणाम नहीं होगा। तो जो गलत डिसीजन मिल गलत निर्णय अंपायर देने वाले हैं वो देता है वो पूर्व कर्म से, पर किस परिस्थिति में वो कर्म यहां पे आता है उससे भी परिणाम काफी होता है। कैसे है कि मान लीजिए किसी को एक बीमारी है, निमोनिया आ गया उसको, अभी उसी समय में उसको दूसरी बीमारी आ गई, तीसरी बीमारी आ गई, चौथी बीमारी आ गई, तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। वही चार बीमारियां उसको अलग अलग समय पे आ गई तो परेशानी तो होगी ही, उस मात्रा में परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए क्या है कि जो पूर्व जन्म के दुख आने वाले हैं यह सत्य है, पर शास्त्र उसी शास्त्रों में हमें यह भी बताया है कि हमें इस जन्म की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। तो इसीलिए अगर इस जन्म की जिम्मेदारियों के अनुसार अगर हम पूरी करते हुए और कोई योजना करते हुए हम किसी दुख का निवारण कर सकते हैं, तो कर्मकांड ये एक केवल एक कैटेगरी है, एक पद्धति है। मान लीजिए अभी भारत ये कुछ भारत मान लीजिए बहुत गर्म होता है, गर्मी बहुत होती है कभी कभी भारत में। अभी कोई ऑस्ट्रेलिया में आता है तो उसमें ठंडी बहुत होती है कभी कभी। तो अभी कोई कह सकता है कि जो व्यक्ति इस जगह जिसका जन्म भारत में हुआ है उनका कर्म ही यही है कि उनको बहुत गर्मी सहन करनी पड़ेगी, गर्मी में जाना पड़ेगा उनको। जो ऑस्ट्रेलिया में है उनका उनका कर्म ही ऐसा है कि उनको बहुत ठंडी सहन करनी पड़ेगी। अब ये सत्य है, तो फिर क्या इसका मतलब है कि गर्मी होगी तो हम फैन नहीं यूज करना चाहिए, ठंडी है तो स्वेटर नहीं यूज करना चाहिए? अरे तुम स्वेटर यूज कर रहे हो तो ठंडी को कम कर रहे हो, जो तुमको कर्म मिलने वाला है वो कर्म बाद में दूसरे पद्धति में मिलेगा। ठीक है, कर्म की बात को छोड़ो, अगर ठंडी मुझे इतनी बज रही है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा अभी, अगर मुझे जब करना है भगवान की सेवा करनी है, अगर ठंडी बज रही है अरे मैं मेरा पूरा कर्म भुगत रहा हूँ। ठीक है, पूरा कर्म भुगत रहे हो पर अभी का कर्तव्य तुम नहीं कर रहे हो। कोई कहता है कि अरे अभी ठंडी सहन नहीं होती है पर अगर मैं स्वेटर पहनूंगा तो फिर क्या होगा, मेरे पूरा कर्म जो है उसका निवारण, तो इसीलिए मैं सुबह उठूंगा ही नहीं, क्या फायदा है उसका। तो क्या है कि हमें ये बहुत ज्यादा विश्लेषण में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। क्या बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल मतलब जो हमारे सेवा के लिए अनुकूल है वह करो और आगे बढ़ो। प्रभुपाद जी खुद आयुर्वेदिक दवाई लिया करते थे, कभी पूर्व कर्म पर ऐसे दिन जोर नहीं किया कि आयुर्वेदिक दवाई सबको लेनी चाहिए, तो किसी का एलोपैथिक दवाई से उसके ठीक होते ठीक चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे तत्वज्ञान के स्तर पर बताया है कि हमारा पूर्व सुख जो हमारे कर्म जो है वो निर्धारित है, पर उन्होंने कभी ऐसे नहीं बताया उसके कारण कि हमें इस जन्म में कुछ जिम्मेदारियां करनी ही नहीं है। भाव क्या है वहां पे कि हमें भौतिक इंप्रूवमेंट, भौतिक विकास में इतना नहीं लग जाना है कि आध्यात्मिक प्रगति को भूल जाए। एवरीथिंग हैज टू बी प्रोपोर्शनेट, सही मात्रा में। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करूंगा और भौतिक स्तर पर कुछ करूंगा ही नहीं, तो फिर शायद उसकी समस्याएं बहुत बढ़ सकती है। कोई व्यक्ति सिर्फ भौतिक स्तर पर कार्य करेगा और आध्यात्मिक स्तर पर कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है, एक समस्या हल होगी, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, चलते ही रहेगा। तो इसीलिए हमें इस तरह से कार्य करना है कि देर शुड बी इनफ मटीरियल स्टेबिलिटी सो दैट देर कैन बी स्पिरिचुअल फोकस। कि उतना तो भौतिक स्तर पे हमको स्टेबिलिटी, स्थिरता आनी चाहिए कि हम आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति कर सकें। अगर परफेक्ट स्थिरता के हम प्रयास करेंगे कि मेरे पास इतना पैसा सेव हो जाएगा बैंक में कि मुझे जिंदगी भर कुछ चिंता नहीं होगी पैसे की, फिर मैं मंदिर में आके भक्ति करूंगा, तो उतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो कभी आने ही वाली नहीं है। कोई बोले तो हमें क्या है कि उसको प्रमाणात्मक मार्ग में देखना है कि भौतिक स्तर पे इतना तो संतुलन आना चाहिए कि हम आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति कर सके। किसी के और सवाल है तो हम कल देख सकते हैं उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमा।
हरे कृष्णा।